जोया को अस्पताल से आए 12 दिन पूरे हो चुके थे। अगली सुबह जोया बिल्कुल स्वस्थ थी। जोया उठी और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। उसका चेहरा पहले से भी अधिक खूबसूरत लग रहा था। माँ की मृत्यु ने उसे काफी कमजोर कर दिया था, किंतु अब वो काफी हद तक स्वस्थ हो चुकी थी। उसे ये तो यकीन हो गया था कि ये दोनों व्यक्ति उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और ये मुझसे चाहते क्या हैं? इसका पता मुझे लगाना होगा। जोया ने एक बार फिर अपना इरादा दृढ़ किया और स्नान करने के लिए वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही जोया वॉशरूम से वापस आई, उसने देखा कि बेड पर एक बेहद खूबसूरत सूट रखा हुआ था। हल्के लाल रंग का सूट था। जोया को वो सूट देखते ही पसंद आ गया। उसने सूट उठाया और थोड़ी तेज आवाज में कहा, कोई है यहाँ? ये सूट किसका है, कोई बताएगा? इतने में एक नौकरानी अंदर आई और बोली, मैडम, अरहम साहब ने आपके लिए ये सूट भेजा है, आज आपको यही पहनना है। आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। जोया ने ये सुनकर हैरान होकर सोचा कि आखिर ये व्यक्ति मुझे क्यों बुला रहा है, क्या बात हो सकती है। खैर, जोया जल्दी से तैयार हुई और नीचे की ओर चल दी। जोया ने पाया कि पूरा बंगला सजा हुआ था। जगह जगह रंग बिरंगी लाइटें, खूबसूरत पर्दे, पूरे बंगले को दुल्हन की तरह सजाया गया था। जोया हैरानी से देखती हुई आगे बढ़ रही थी। जोया जैसे ही हॉल में गई, उसने देखा कि कई लोग वहां जमा थे और बीचों बीच एक बड़ा ही खूबसूरत केक रखा था, जिस पर जोया का नाम लिखा था। जोया बड़ी हैरानी से सब देख रही थी, और तभी अरमान और अरहम की नज़र एक साथ जोया पर पड़ी और वे दोनों बिना पलक झपके उसे देख रहे थे। उस हल्के लाल रंग के सूट में जोया किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। जोया को देखते ही सब एक साथ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू छोटी मालकिन, हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर सब एक साथ तालियां बजाने लगे। जोया उन सब के मुंह से छोटी मालकिन सुनकर हैरान हो गई। ये सब मुझे छोटी मालकिन क्यों कह रहे थे, वो सोच में पड़ गई। तभी अरमान उसकी ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे सबके सामने ले आया और केक काटने को कहा। अरहम ने जोया के हाथ में केक का चाकू दे दिया। जोया के पास केक काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने एक नज़र अरमान और अरहम को देखा, फिर मोमबत्तियां बुझाकर केक काट दिया। सभी ने एक साथ तालियां बजाई और एक बार फिर जोया को जन्मदिन की बधाई दी। पहले अरमान ने आगे बढ़कर थोड़ा सा केक जोया को खिलाया और फिर अरहम ने। फिर अचानक जोया ने देखा कि जितने मेहमान वहां थे, केक कटने के बाद एक एक करके सब जाने लगे थे। जोया बड़ी हैरानी के साथ सबको जाते हुए देख रही थी। सभी मेहमान जा चुके थे, अब उस हॉल में केवल जोया, अरमान और अरहम थे। जोया सवालिया निगाहों से उन दोनों को देख रही थी। तभी अरमान ने कहा, क्या हुआ स्वीटी, क्यों परेशान हो? उन मेहमानों को ज्यादा देर तक तुम्हें देखने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्हें तो जाना ही था। अगर उनमें से कोई रुक जाता तो उसकी लाश यहाँ से जाती। जोया ये सुनकर कांप सी गई, लेकिन अपने आप को मजबूत करते हुए बोली, आखिर तुम दोनों को समस्या क्या है, चाहते क्या हो मुझसे तुम दोनों? तभी अरहम ने कहा, ओ जान, मैं बताता हूँ, हम दोनों भाई मोहब्बत करते हैं तुमसे, जान हो तुम हम दोनों की। जोया ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तभी अरमान बीच में ही बोला, नहीं स्वीटी, हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक है, और हम सच कह रहा है, हम दोनों भाई मोहब्बत करते हैं तुमसे, और हम तुम्हें वादा करते हैं, हमारी जैसी मोहब्बत तुम्हें जिंदगी में किसी ने नहीं की होगी। ऐसा कहकर अरमान के चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान आ गई। जोया को एक अनजाना सा डर सताने लगा। वो कुछ नहीं बोली और उन दोनों को एक नज़र देखती हुई अपने कमरे में जाने लगी। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। जोया सीधा अपने कमरे में जाकर सीधा बिस्तर पर लेट गई। अभी उसे लेटे हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने लेटे लेटे ही हाँ कहा तो एक नौकरानी बड़ी सी फूड ट्रे में खाना लेकर आई। जोया को वैसे भी बहुत भूख लगी थी, इसीलिए उसने नौकरानी को खाना रखकर जाने को कहा। वो नौकरानी खाना रखकर चली गई। जोया ने देखा सारा खाना उसकी पसंद का था, बिरयानी, कबाब, सलाद, रायता सभी वहां मौजूद था। जोया खाना देखते ही खुश हो गई, क्योंकि सारा खाना उसकी पसंद का था, इसीलिए वो खाने पर टूट पड़ी और लगभग सारा खाना उसने खा लिया। खाना खाकर उसे बहुत नींद आने लगी, इसीलिए वो बिना दरवाजा बंद किए गहरी नींद में सो गई। जोया को सोते हुए केवल 2 घंटे ही हुए थे कि उसकी आंखें एक भयानक चीख से खुल गईं। वो डर के मारे बैठ गई। उसका गला प्यास से सूख रहा था। उसने देखा कि उसके जग में पानी नहीं था। एक तो वो उस आवाज को लेकर परेशान थी, दूसरा उसे प्यास लगी थी, इसीलिए वो जग उठाकर धीरे धीरे किचन की ओर पानी लेने के लिए चल पड़ी। जोया अभी किचन में जा ही रही थी कि उसे नीचे तहखाने में से एक रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा, ये अच्छा मौका है इन दोनों के बारे में पता लगाने का, इसीलिए वो चुपचाप किचन से पानी पीकर नीचे तहखाने की ओर चल पड़ी, जहां से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। जोया आगे पीछे देखते हुए बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रही थी। तभी उसे फिर से एक और चीख सुनाई दी। वो आवाज तहखाने में से ही आ रही थी। जोया जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। वो आज देखना चाहती थी कि आखिर यहाँ कौन है और इन दोनों ने किसे अगवा करके रखा है। वो उस तहखाने के अंदर प्रवेश करने ही वाली थी कि तभी अचानक